लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु येसु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय का शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। इस अध्याय की चर्चा करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि यीशु के हृदय में बने रहना मानवीय सम्मान में हमारी चाह की वृद्धि करता है, जैसे कि हम मानव और ईश्वरीय संतान हैं। इसकी शुरुआत सुसमाचार से होती है, जो हमसे प्रेम, क्षमा और न्याय, गरीबों तथा दुनिया से परित्यक्त लोगों संग एकता की मांग करती है। उसी भांति दुनिया के बहुत सारे तीर्थस्थल जो पवित्र हृदय को समर्पित हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना और आध्यात्मिकता में नवीनीकरण के स्रोत बनते हैं। श्रोताओं, यीशु की घायल बगल, वहां से जीवन जल का बह निकलना, पुनर्जीवित मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के शरीर में खुला रहता है। भाले से किया गया गहरा घाव और कांटों के मुकुट का घाव, जो परंपरागत रूप से पवित्र हृदय के चित्रण में प्रकट होते हैं, वे इस भक्ति का एक अहम हिस्सा हैं, जिसमें हम मसीह के प्रेम पर चिंतन करते हैं, जिन्होंने अंत तक अपने आप को बलिदान कर दिया। पुनर्जीवित यीशु का हृदय उस संपूर्ण समर्पण की निशानी को सुव्यवस्थित रखता है, जिसमें हम अपने खातिर घोर दुखों को पाते हैं। यह इस भांति स्वाभाविक है कि विश्वास केवल इस उमड़ते हुए महान प्रेम का प्रति उत्तर दे, बल्कि यीशु ख्रिस्त के उन दुखों का भी उन्होंने हमारे प्रेम के खातिर चुना। श्रोताओं, यह हमारे लिए उचित है कि हम आध्यात्मिकता के एक अहम भाग की खोज करें, जो हमें यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय की आराधना करने को अग्रसर करता हो, मुख्यतः उस आंतरिक चाह को जो उनके हृदय को सांत्वना से भर देता है। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं क्षतिपूर्ति की प्रथा पर चर्चा नहीं करूंगा, जिसे मैं इस भक्ति के सामाजिक आयाम के लिए अधिक उपयुक्त मानता हूं, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। इसके बदले में संत पापा फ्रांसिस इस चाह पर अपना ध्यान केंद्रित कराते हैं, जो बहुधा विश्वासियों के हृदय में इस चाह को उत्पन्न करती है, जहां वे प्रेम से यीशु ख्रिस्त के दुख भोग के रहस्य पर चिंतन करती और इसे एक रहस्य के रूप में अनुभव करते हैं, जो सिर्फ याद नहीं किया जाता, बल्कि कृपा या बेहतरी के रूप में हमारे लिए उपस्थित रहता है। यह हमें हमारे मुक्ति के क्षणों में रहस्यात्मक रूप में उपस्थित रहने में मदद करता है। यदि हम सच्चे रूप में यीशु को प्रेम करते हैं, तो हम उन्हें कैसे सांत्वना देने की चाह नहीं रख सकते हैं। श्रोताओं, संत पापा पीयूस 11वें इस विशेष आराधना को इस बात की अनुभूति में स्थापित करना चाहा कि ख्रिस्त के दुख भोग द्वारा हमारे उद्धार का रहस्य ईश्वर की कृपा से समय और स्थान की सभी सीमाओं के परे जाती है। हमारे पापों के अलावे क्रूस में यीशु अपने को सारे पापों के लिए अर्पित करते हैं, उन्हें भी जिन्हें हमने अब तक नहीं किया है। उसी भांति हम उन्हें सांत्वना देने के लिए जो कार्य करते हैं, समय के परे जाते हुए उनके घायल हृदय का स्पर्श करता है। यदि हमारे पापों के कारण भी जो भविष्य में होने को है लेकिन पहले से ही पूर्व अनुमानित है, यीशु का हृदय अपने में मरण की स्थिति तक दुख का अनुभव करता है, तो इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि उसी समय उसे हमारे प्रायश्चित से कुछ सांत्वना मिलती है जो उसी प्रकार पूर्वानुमानित है जो हमारे लिए उस क्षण को व्यक्त करता है जब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ, जिससे उनका हृदय जो चिंता से बोझिल और दुख का शिकार है अपने में सांत्वना का अनुभव करे। अब भी आश्चर्यजनक रूप में, यद्यपि यह सत्य है, हमें चाहिए और हम यीशु के अति पवित्रतम हृदय को सांत्वना प्रदान कर सकते हैं जो निरंतर कृतज्ञहीन मनुष्यों के पापों से घायल है। श्रोताओं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु ख्रिस्त के हृदय की आराधना में एक सुनिश्चित ईश शास्त्रीय आधार की कमी है, फिर भी हृदय के अपने कारण हैं। यहाँ सेंसुम फिदेलियम कुछ रहस्यात्मक बातों को व्यक्त करता है जो हम मानवीय तर्क से परे है, और यह इस बात का अनुभव करता है कि यह अतीत की एक घटना मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसी घटना है जिसमें हम विश्वास के माध्यम अपने को उनके संग सहभागी कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त का क्रूस पर अपने को अर्पित करने की घटना पर चिंतन करना ख्रिस्तीय आस्था के लिए अपने में कुछ बातों की याद करने से कहीं बढ़कर है। इस विश्वास का एक ठोस ईश शास्त्रीय आधार है। हम यहाँ अपने पापों की पहचान को भी जोड़ सकते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने घायल कंधों पर वहन किया, और उस शाश्वत प्रेम के सामने हमारी अपर्याप्तता जो सदैव असीम रूप से महान है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम अपने में यह सवाल पूछ सकते हैं कि हम जीवन के ईश्वर से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं जो मृतकों में से जी उठे और महिमा में राज करते हैं, जबकि हम उन्हें दुखों के मध्य कैसे सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। यहाँ हमें इस बात को अनुभव करने की जरूरत है कि उनका पुनर्जीवित हृदय घावों को निरंतर एक यादगारी के रूप में रखता है, और कृपा का कार्य करना हमारे लिए इस अनुभूति को संभव बनाती है कि वह अतीत के एकमात्र क्षण में सीमित होकर नहीं रह जाती है। इस पर विचार करना हमें इस बात के लिए निमंत्रण देता है कि हम एक रहस्यमय मार्ग का चुनाव करें जो हमारी मानसिक सीमाओं के परे जाती है, यद्यपि यह सुदृढ़ रूप में ईश्वर के वचनों में आधारित होता है। संत पापा पियूस 11वें इसे स्पष्ट करते हैं। अब जब मसीह पहले से ही स्वर्ग में राज्य करते हैं तो ये क्षतिपूर्ति के कार्य कैसे सांत्वना दे सकते हैं? इस सवाल का उत्तर हम अगस्टिन के शब्दों में दे सकते हैं जो यहाँ बहुत उपयुक्त हैं। मुझे एक प्रेम करने वाले को दो और वह समझेगा मैं क्या कहता हूँ। कोई भी जो ईश्वर के प्रति महान प्रेम से भरा है और जो अतीत को मुड़कर देखता है, वह ख्रिस्त के चिंतन पर निवास करता है और उन्हें मानव के लिए कार्य करते, दुख उठाते, कठिनाइयों का सामना करते हुए देखता है। वे मनुष्यों और उनकी मुक्ति के लिए ऐसा करते हैं, पीड़ा के बोझ से दबे और वेदना से लगभग थके हुए, बल्कि हमारे पापों के कारण कुचले हुए, और वे उन्हें पापों के द्वारा हमें चंगा करते हैं। जितना अधिक विश्वासी इन बातों पर विचार करते हैं उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से मानव जाति के पापों को वे पाते हैं जब कभी वे किए गए थे। ये वही कारण थे जिसके कारण मसीह को मृत्यु के हवाले किया गया। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को विश्वभर के प्रेरितिक राजदूतों से मुलाकात की तथा उनसे आग्रह किया कि वे विश्व के प्रति कलीसिया के प्रेम तथा जरूरतमंदों के पक्ष में खड़े होने के लिए हर संभव प्रयास करने की उसकी इच्छा का साक्ष्य दें। दुनिया भर के प्रेरितिक राजदूतों और पोप के अन्य प्रतिनिधियों ने मंगलवार को वैटिकन में पोप लियो 14वें से मुलाकात की। जैसा कि अन्य संत पापाओं ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों से अपनी पहली मुलाकात में की है, पोप लियो ने प्रत्येक को पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ उनके संबंध का प्रतीक एक अंगूठी भेंट की, जिस पर सुब उम्र पेत्र लिखा हुआ है। पोप ने अपने संबोधन में कहा, हमेशा संत पेत्रुस से जुड़े हुए, संत पेत्रुस द्वारा संरक्षित और संत पेत्रुस द्वारा भेजे गए महसूस करें। केवल पोप के साथ आज्ञाकारिता और प्रभावी संवाद में ही आपकी प्रेरिता स्थानीय धर्मदक्षों के साथ संवाद में कलीसिया के निर्माण के लिए प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा, पोप के प्रतिनिधि कात्तिक कलीसिया और उसके सार्वभौमिकता की छवि हैं, क्योंकि वे कई देशों से आते हैं और दुनिया भर में पोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे जाते हैं। साथ ही पोप ने कहा कि कोई भी अन्य राजनयिक दल परमधम पीठ के राजनयिक कर्मियों की तुलना में एकता एवं उद्देश्य में इतना एकजुट नहीं होता। उन्होंने कहा, परमधम पीठ की कूटनीति अपने कर्मियों में एक आदर्श स्थापित करती है, निश्चित रूप से परिपूर्ण नहीं लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, जो लोगों के बीच मानवीय भाईचारा और शांति का संदेश है। पोप ने कहा कि वैटिकन प्रतिनिधियों की प्रेरिताएं अपूर्णीय है और कहा कि धर्मदर्श के लिए उम्मीदवारों को चुनने में उनकी सहायता वास्तव में आवश्यक है। पोप लियो ने अपने तैयार भाषण में संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी प्रेरिताई की पहली कार्यवाही के दौरान उनकी सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी देश से संबंधित मुद्दों और स्थितियों को समझने में उनकी सहायता की सराहना करते हैं। उन्होंने उनकी प्रेरितिक शैली और आस्था की भावना की सराहना की और पोप पॉल 6वें के शब्दों में याद किया, जो स्वयं एक राजनयिक थे। उन्होंने कहा, विभिन्न देशों में रहने वाले अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पोप अपने बच्चों के जीवन में भागीदार बनते हैं। उन्होंने कहा, हमेशा संत पेत्रुस की नजर में रहें, ऐसे व्यक्ति बने जो उस समय भी संबंध बनाने में सक्षम हो जहां यह सबसे कठिन हो। पोप ने कहा कि यीशु को देने का अर्थ है प्रेम देना, उस प्रेम की गवाही देना जो हर चीज के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कलीसिया प्रेम से कुछ भी करने के लिए तैयार है और यह हमेशा छोटों एवं गरीब लोगों के पक्ष में है। अंत में संत पापा ने अपने प्रतिनिधियों को पोप द्वारा भेजे गए मिशनरी बनने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे मानव गरिमा की सेवा में सहभागिता और एकता के साधन बन सकें। और आज के एक संदेश में संत पापा ने कहा, ख्रिस्त को दूसरों को देने का अर्थ है प्यार देना, उस उदारता का साक्ष्य देना जो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। प्रेम ही विश्वास के योग्य है। परमधम पीठ की जयंती एवं पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात से पहले एक साक्षात्कार में राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने प्रेरितिक राजदूतों को सेतु के रूप में वर्णित किया जो पोप को स्थानीय कलीसियाओं से, कलीसिया को राष्ट्रों से तथा विश्व के घावों को सुसमाचार की आशा से जोड़ता है। कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में कहा, परमधम पीठ के प्रतिनिधि सुसमाचार की कूटनीति के वाहक हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वे मध्यस्थता एवं संवाद के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें और शांति का बीजारोपण करें। वैटिकन राज्य सचिव सोमवार 9 जून को परमधम पीठ की जयंती के अवसर पर और मंगलवार 10 जून को परमधम पीठ के प्रतिनिधियों के साथ पोप लियो 14वें की मुलाकात की पूर्व संध्या पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, परमधम पीठ की जयंती एकता का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है, यहाँ तक कि परमधम पीठ के प्रतिनिधियों के लिए भी। उनमें से प्रत्येक जन एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने की संभावना के बिना एक तरह की निरंतर तीर्थयात्रा करते हैं। यह एक चलते रहने का जीवन है लेकिन एकाकी का नहीं। जयंती एक ऐसे परिवार की छवि को ध्यान में लाती है जो दुनिया भर में फैला है फिर भी एकजुट है, पोप के करीब होने के लिए रोम में एकत्रित है। यह मिलन कलीसिया के स्थानीय एवं सार्वभौमिक आयामों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। परमधम पीठ के प्रतिनिधि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ख्रिस्त के पुरोहित एवं उन समुदायों के बीच एक सेतु हैं, जहां उन्हें भेजा जाता है। साथ ही वह स्थानीय कलीसियाओं और परमधम पीठ के बीच संबंध बनाए रखता है। उन्होंने बतलाया कि राज्य सचिवालय इस एकता को बनाए रखने में एक समन्वयकारी भूमिका निभाता है। वह रोम और दुनिया भर में परमधम पीठ के प्रतिनिधियों के मिशन का समर्थन करता है। प्रेरितिक राजदूत स्थानीय कलीसियाओं एवं नागरिक अधिकारियों के लिए संत पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपनी प्रेरितिक एवं कूटनीतिक जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करते हैं, इसका उत्तर देते हुए वैटिकन राज्य सचिव ने कहा, प्रेरितिक राजदूत वास्तव में देश की सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए पोप के प्रतिनिधि हैं। इस अर्थ में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से कूटनीतिक है। नागरिक अधिकारियों के साथ जुड़ना, विभाजन को ठीक करने के लिए काम करना और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना उनका काम है। वे इस काम को राष्ट्रीय हितों की खोज में नहीं करते बल्कि दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक सुसमाचार केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित होते हैं। हालांकि उनकी भूमिका को पूरी तरह संस्थागत कार्य तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक सच्ची प्रेरितिक उपस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। एक प्रेरितिक राजदूत सबसे बढ़कर कलीसिया का व्यक्ति है, वह चरवाहा है जिसे भले चरवाहे ख्रिस्त के उदाहरण का पालन करने के लिए बुलाया जाता है। चरवाहा होने का मतलब है धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघे और उन समुदायों के करीब आना जिनकी सेवा करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। इसके लिए एक कलीसियाई दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। थाईलैंड और फिलीपींस के कार्तिक व्यवसायी नेता 7 और 8 जून को बान फू वान प्रेरितिक प्रशिक्षण केंद्र में कैथोलिक व्यापार ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए एकत्रित हैं, जो एक नई प्रशिक्षण पहल है जिसका उद्देश्य है व्यापारिक नेतृत्व को ख्रिस्तीय मूल्यों के साथ जोड़ना। थाईलैंड में कार्तिक व्यापारी कार्यकारी एवं पेशेवरों और फिलीपींस में ख्रिस्तीय पेशेवर एवं व्यापारी भ्रातृत्व द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनियन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के तहत व्यापक सहयोग का हिस्सा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।